किताब है योग विज्ञान, रचयिता है आदि मुनीश्वर योगेश्वर श्री शिव मुनि जी महाराज। अध्याय है दो, विषय है साधन का महत्व। जैसे बोतल को साफ करने के लिए बोतल में गर्म जल डालकर उसे बार बार नीचे से ऊपर घुमाते हैं और बोतल को साफ कर लेते हैं, ठीक इसी तरह से अंगंग, जोड़ जोड़, गांठ गांठ, पोपो और शरीर के अवयव अवयव में गर्म रक्त बार बार नीचे ऊपर और इधर उधर घुमाकर सारे शरीर को हमारे मुनि लोग स्वच्छ कर लेते हैं। जैसे कहीं का राजा, गवर्नर या लॉर्ड साहब जब किसी अपने राज के नगर को देखने जाते हैं तो वह नगर साफ सुथरा और स्वच्छ कर दिया जाता है और नगर की खूब सफाई हो जाती है, उसी तरह से शरीर के अंगंग और अणु अणु में शरीर के मालिक मनो में आत्मा व जीव को फेरने और घुमाने से सारा शरीर निर्विकार और साफ हो जाता है। कारखाने में मालिक के घूमने से जैसे मजदूर ठीक ठीक काम करने लगते हैं, उसी तरह से शरीर के अंदर आत्मा को घुमाने से शरीर के रक्षक और काम करने वाले अणु तथा अवयव आलस्य छोड़कर ठीक ठीक काम करने लगते हैं। इसी साधन का चक्रभेदन योग भी कहते हैं। मुनि समाज के सच्चे योग द्वारा, मुनि समाज के चक्रभेदन वाले अष्टांग योग द्वारा यह सब हो जाता है और शरीर तथा मन दोनों स्वच्छ हो जाते हैं। यही कारण है कि मुनियों सदस्यों और हमारे शिष्यों तथा सच्चे योगियों को हमारे बताए हुए इस सच्चे योग को नित्य अवश्य करना होता है। बिना इस साधन के, बिना स्वाध्याय, सत्संग, शुभ भावना तथा आत्मज्ञान के अपना पूर्ण प्रभाव कोई अपने शरीर के ऊपर नहीं डाल सकता। बिना जोते हुए खेत में बीज बोना व्यर्थ है। अतः इस साधन द्वारा शरीर को स्वच्छ, निर्विकार, बलवान बनाकर फिर शुभ भावना करना चाहिए। हमारे बताए हुए योग साधन के आदि और अंत में दो बार शुभ भावना होना आवश्यक है। उच्च ज्ञान और उच्च भावना के अनुसार उच्च कक्षा का कर्म होना स्वाभाविक है। कर्म और साधन करने से उच्च ज्ञान और भावना व्यर्थ हो जाता है। उच्च भावना, उच्च ज्ञान और आत्मज्ञान पाकर भी जो नरक का कीड़ा होकर नरक में पड़ा रहना चाहता है, इस बात का प्रमाण है कि उसे सचमुच ज्ञान नहीं हुआ है। विद्या को अच्छा समझकर और जानकार भी जो विद्या पढ़ने का यत्न नहीं करता, उसे सचमुच विद्या की उच्चता का ज्ञान और जानकारी नहीं है। विद्या के लिए जो यत्न नहीं करता, वह वास्तव में विद्या के महत्व और विद्या के सच्चे स्वरूप से अनभिज्ञ है। विद्या से मतलब केवल अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान व किसी भाषा के व्याकरण के ज्ञान से नहीं है। जो जिस कर्म के महत्व को सचमुच जान लेता है, वह उसे करने लगता है। व्यायाम के महत्व को सचमुच जानकर कोई व्यायाम से विरक्त नहीं हो सकता। बाएं हाथ से दाहिना हाथ अधिक पुष्ट क्यों है? क्या दाहिने हाथ को लोग कोई औषधि खिलाते हैं? नहीं, दाहिने हाथ का व्यायाम बाएं हाथ से अधिक हो जाता है। भोजन करते समय, लिखते समय, दाहिने हाथ में लाठी लेकर चलते समय, तलवार, छुरी और हंसिया चलाते समय तथा अनेक प्रकार के अनेक काम करते समय दाहिने हाथ का विशेष उपयोग होता है, इसलिए उसका व्यायाम अधिक होता है। जिस अंग का विशेष व्यायाम होगा, वही अंग अधिक पृष्ठ होगा, यह नियम है। संसार में सिवा चक्रभेदन रूप योग व्यायाम के और कोई दूसरा व्यायाम ऐसा व्यायाम नहीं है जिसके द्वारा शरीर के सर्वांग का व्यायाम हो जाता है। मुनि समाज के सच्चे योग द्वारा शरीर के जोड़ हड्डी, अवयव अवयव, अंग अंग और शरीर के अणु अणु का व्यायाम हो जाता है। इसी तरह से प्रत्याहार और चक्र भेदन द्वारा इंद्रियों का, धारणा द्वारा मन का और प्राणायाम द्वारा प्राणों का व्यायाम हो जाता है। इस योग को हमसे या मुनि समाज के उस सदस्य से जिसे शिक्षा देने का अधिकार दिया गया हो, सदस्य होकर शिक्षा देने वाले के सामने बैठकर सीख लेना चाहिए। आजकल आर्य समाजी या सनातन धर्मी जिस तरह से प्राणायाम करते हैं, वह गलत है और बहुत ही हानिकारक है। प्राणायाम का विज्ञान और प्राणायाम का सही तरीका हम बतलाते हैं। प्राणायाम का विज्ञान व साइंस और उसका सही तरीका बतलाने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, पर बतलाने पर प्रत्येक विद्वान को विवश होकर यही कहना पड़ता है कि यही प्राणायाम का सही तरीका है। हमारे सचित्र योग साधन नाम के ग्रंथ से इस विषय का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। चक्रभेदन, योग व्यायाम, प्राणायाम, शुभ भावना और समाधि का विज्ञान या साइंस बताकर तब उसका साधन बताया जाता है। उसको सुनकर सीख लेने वाले सभी साधक मुक्तकंठ से कहते हैं कि यही सच्चा योग है, यही सच्चा योग व्यायाम है और यही सच्ची समाधि है। दूसरे लोग अपने शिष्यों को संप्रज्ञात समाधि, निर्विकल्प समाधि व निर्वीज समाधि के नाम से जड़ समाधि की ओर ले जाते हैं। कुछ लोग अपने शिष्यों को केवल अनाहतध्वनि और व्यर्थ के कल्पित बड़े बड़े भीतरी स्थानों का वर्णन कर उसी में फंसाए रखते हैं। देखा यह जाता है कि ऐसे साधक न स्वस्थ होते हैं, न बलवान होते हैं, न निरोग होते हैं, न तेजस्वी होते हैं, न बड़ी आयु वाले होते हैं और न प्रसन्न होते हैं। बात यह है कि वह लोग शरीर का साधन ही नहीं करते, पर इस सच्चे योग में, इस अष्टांग योग में व इस सर्वांग पूर्ण योग में सब कुछ है और बहुत ही सरल है। इसका प्राणायाम तो ऐसा सरल है कि आपसे आप हो जाता है। न आर्य समाजी तरीके से रोकना पड़ता है, न सनातन धर्मी तरीके से रोकना पड़ता ही नहीं, प्राण आपसे आप रुक जाता है। और जितने प्राणायाम है उसमें ज्यों ज्यों देर होती है और ज्यों ज्यों तथा जितना ही अधिक देर तक श्वास रोका जाता है उतना ही साधक को कष्ट होता है। पर प्राणायाम की इस सच्ची विधि और इस सच्चे योग में आपका श्वास जितना ही अधिक रुकता जाएगा, जितना ही इसकी गति संख्या और विस्तार गति कम होती जाएगी, उतना ही साधक के भीतर एक अपूर्व आनंद और शांति बढ़ती जाएगी। प्राणों के इस व्यायाम व प्राणायाम से प्राण सबल होता है और उसे आराम मिलता है। यह पुष्ट, सबल और प्रसन्न होकर शरीर को भी स्वस्थ, सबल और प्रसन्न बना देता है। पर इन साधनों को सीखने के लिए सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप यहीं हमारे पास गोरखपुर आकर सीख जाएं। यदि ऐसा संभव न हो तो आप उन लोगों से भी सीख सकते हैं जिसे हमने सिखाने का अधिकार दे दिया है। अधिकारियों से योग सीखना रोग का कारण होता है। समाप्त।